हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। तारा परी और करिश्मा जी बड़ी ही सावधानी से आगे बढ़ रहे थे। जैसे ही वे थोड़ा आगे बढ़े, अचानक कहीं से एक बहुत मोटा, काला जंगली कुत्ता आ गया। इतने भयानक और बड़े कुत्ते को देखकर तारा परी एक पल के लिए पूरी तरह डर गई। करिश्मा जी ने तारा का हाथ पकड़ लिया। ये एक जंगली कुत्ता है, करिश्मा जी ने कहा। अगर इसने हमें पकड़ लिया या काट लिया तो हमारी जान जाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। तुम मेरा हाथ पकड़ो और मेरे पीछे खड़ी हो जाओ। तारा ने करिश्मा जी की बात मान ली। अभी शिव मंदिर तक जाने के लिए उन्हें उस खंडहर नुमा गाँव को पार करना था और शिव मंदिर के आसपास ही अमन के पिताजी के होने के पूरे चांस थे, जहाँ तक तारा और करिश्मा जी को लगता था। अचानक उस काले मोटे कुत्ते ने अपनी आँखों का रंग बदल दिया। उसकी आँखें एकदम लाल हो गईं और वो धीरे धीरे तारा और करिश्मा जी की ओर बढ़ने लगा। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उसे हुक्म दिया हो तारा और करिश्मा को जान लेने का। नॉर्मल कुत्ते से इतना डर नहीं लगता, लेकिन ये कुत्ता तो किसी हाथी के बराबर बड़ा था। उसकी आँखें लाल सुर्ख थीं और उसका पूरा शरीर एकदम भयानक काला सियाह था। उसे देखकर तारा और करिश्मा डर रही थीं। जैसे जैसे वो उनकी ओर बढ़ रहा था, उनके दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। तारा परी ने मन ही मन कुत्तों से बचने के लिए एक मंत्र का उच्चारण शुरू कर दिया और उसने अपनी सासू माँ करिश्मा जी का हाथ कसकर पकड़ लिया। तारा का मंत्र उसकी और करिश्मा जी की रक्षा तभी तक कर सकता था जब वे एक दूसरे से जुड़ी हों, यानी एक दूसरे का हाथ पकड़े हों। जैसे ही तारा ने करिश्मा जी का हाथ पकड़कर मंत्र पढ़ा, वे दोनों अदृश्य हो गईं। करिश्मा जी को तो एहसास ही नहीं था कि वो अदृश्य हो चुकी हैं। वो अभी भी तारा का हाथ कसकर पकड़े ये सोच रही थीं कि वो तारा की जान कैसे बचाएंगी, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि तारा उन्हें अदृश्य कर चुकी थी। अब वे उस कुत्ते को दिखाई नहीं दे रही थीं। जैसे ही तारा और करिश्मा अदृश्य हुईं, वो कुत्ता जो काली शक्तियों के गुरु द्वारा भेजा गया था, हैरान हो गया। पहले तो उसे करिश्मा जी और तारा परी दिखाई दे रही थीं, लेकिन अब दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा था। फिर अचानक उसका हाथी जैसा शरीर छोटा होने लगा और छोटा होकर किसी को ना पाकर वो गायब हो गया। जैसे ही करिश्मा जी ने देखा कि कुत्ता गायब हो चुका है, उन्हें राहत मिली। साथ ही वे हैरान भी थीं कि कुत्ता अचानक कैसे चला गया। उन्होंने सोचा, शायद कुत्ता जान गया होगा कि करिश्मा एक जिन है, इसलिए वो चला गया। तारा परी ने फिर से मंत्र का उच्चारण किया और करिश्मा जी का हाथ छोड़ दिया। इसके बाद वे लोग फिर से दिखाई देने लगे। तारा ने करिश्मा को बिना बताए उनकी जान बचा ली थी। जल्दी से वे लोग गांव को पार करने लगे। वे अच्छी तरह जानते थे कि अगर उन्होंने गांव को पार नहीं किया तो इसी तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता था, क्योंकि काली शक्तियों का गुरु चुप नहीं बैठने वाला था। तारा और करिश्मा जी अपनी मंजिल की ओर तेजी से बढ़ने लगे थे। वहीं दूसरी ओर अमन की परीक्षा का आज तीसरा दिन था। दिन धीरे धीरे बढ़ रहे थे। तारा और करिश्मा जी को एहसास ही नहीं था कि उन्हें शिव मंदिर तक पहुंचने में पहले ही दो दिन हो चुके थे। वे दोनों चलती जा रही थीं। करिश्मा जी तारा का बहुत ध्यान रख रही थीं। वो अच्छी तरह जानती थी कि उसकी बहू माँ बनने वाली है और कब उसे किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए, इसीलिए वो उसके खाने पीने का पूरा ध्यान रख रही थी। उनकी पूरी शक्तियाँ उस वन में काम नहीं कर रही थीं, लेकिन थोड़ी बहुत खाना पीने की शक्तियाँ काम कर रही थीं। इसके बदौलत वो तारा को अच्छा खाना खिला रही थी। अमन कड़ी तपस्या में लीन था, बिना खाए पिए। उसके दादा महाराज उसकी पूरी तरह सहायता और सुरक्षा कर रहे थे। वे अच्छी तरह जानते थे कि जब तक उनका पोता 7 दिन का कड़ा तप पूरा नहीं कर लेता, तब तक उसके अंदर वो शक्तियाँ नहीं आएंगी जिनकी उसे ज़रूरत है। उन शक्तियों के बदौलत ही वो अपने दादाजी महाराज को छुड़ा पाएगा। ये बात उसके दादाजी महाराज अच्छी तरह जानते थे, इसीलिए वे हर तरह से अमन को सुरक्षा प्रदान कर रहे थे। हालांकि वे उसे देख नहीं सकते थे, लेकिन मंत्रों के उच्चारण से उसे धूप, बारिश और कीड़ों मकोड़ों से बचा रहे थे। दूसरी ओर विक्रांत रंधावा जल्दी ही अपनी माँ के पास पहुँच गया था। वहाँ पहुँचकर उसने देखा कि उसकी माँ अभी भी तप कर रही थी, लेकिन वो ये देखकर हैरान हो गया कि काले नाग को उन्होंने पत्थर का बनाया था, वो अब वहाँ नहीं था, न ही उसकी मूर्ति वहां थी। विक्रांत ये देखकर गुस्से में हो गया था क्योंकि नाग ने उसके तारा को मारने की बात कही थी, इसीलिए विक्रांत किसी भी कीमत पर उसे आज़ाद नहीं करना चाहता था। जैसे ही उसने अपनी माँ से कहा कि वो काला नाग कहाँ है, उसकी माँ ने तुरंत अपनी आँखें खोल लीं और अपने बेटे को सारी बात समझा दी। जैसे ही विक्रांत को पता चला कि काली शक्तियों के महागुरु का वो नाग था और इस नाग ने तारा के लिए मुसीबतें पैदा की थीं, वो काफी गुस्से में हो गया था। लेकिन अपनी माँ के समझाने पर वो शांत हो गया था क्योंकि उसका काली शक्तियों के गुरु से कोई लेना देना नहीं था। काली शक्तियों की लड़ाई सफेद जिन्नों के साथ थी, इसलिए विक्रांत का इसमें कोई रोल नहीं था। इसीलिए उसने अपनी माँ से कहा कि वो पता करके ये बताएं कि तारा इस वक्त कहाँ है। वो तारा को लेने जा रहा था क्योंकि अब फेस टू फेस तारा से मिलने का समय आ गया था। अपने बेटे की बात सुनकर विक्रांत रंधावा की माँ मुस्कुराने लगी थी। वो भी यही चाहती थी कि उनका बेटा तारा को प्यार करने के चक्कर में ना पड़कर फेस टू फेस उसे जबरदस्ती अपना बना ले। लेकिन विक्रांत रंधावा के सर पर तारा को अपना बनाने का जुनून सवार था, लेकिन अब उसे समझ में आ गया था कि तारा परी इतनी आसानी से उसके कब्जे में नहीं आने वाली थी, न ही वो अमन को छोड़कर उससे कभी प्यार करने वाली थी। इसीलिए उसने जबरदस्ती तारा को अपना बनाने का फैसला कर लिया था। जल्दी ही उसकी माँ कड़े तप में बैठ चुकी थी और वो जल्द से जल्द पता करके तारा किस दिशा में गई है और इस वक्त कहाँ है अपने बेटे को बताना चाहती थी, ताकि उसका बेटा जाए और बालों से पकड़कर तारा को घसीटकर इस जंगल में ले आए और फिर उसके साथ शारीरिक संबंध बना ले, चाहे जबरदस्ती ही क्यों ना हो। शारीरिक संबंध बनाने के बाद उसका जो पेट में बच्चा है वो तो अपने आप मर ही जाएगा, साथ ही तारा हमेशा हमेशा के लिए उसके बेटे की हो जाएगी और तारा ने जो पिछले जन्म में उसके बेटे के साथ किया था उसका बदला पूरा हो जाएगा। जल्दी ही विक्रांत रंधावा की माँ ने सारा प्लान तैयार कर लिया था। कुछ देर घोर तपस्या करने के बाद करीब 15-20 मिनट बाद विक्रांत रंधावा की माँ ने अपनी आँखें खोल ली। उसने देखा कि उसका बेटा उनके इंतजार में इधर उधर टहल रहा था। वो बार बार अपनी माँ की ओर देख रहा था कि कब उनकी माँ अपनी आँखें खोलेंगी और उसे तारा परी का पता बताएंगी। जैसे ही विक्रांत की नज़र अपनी माँ की खुली हुई आँखों पर गई, वो जल्दी से उनके पास चला गया। हाँ माँ, बताओ कहाँ है तारा, बोलो। जैसे ही विक्रांत ने ये कहा, उसकी माँ उसकी ओर देखने लगी और बोली, बेटा तारा इस वक्त इसी जंगल के आखिरी छोर पर है, यानी वो एक शिव मंदिर की ओर बढ़ रही है जो कभी जिन्नतों और काली शक्तियों की लड़ाई में ध्वस्त हो चुका था। जैसे ही विक्रांत ने ये सुना, उसकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने अपनी माँ से कहा, तो ठीक है, मैं भी शिव मंदिर की ओर चला जाता हूँ। लेकिन तभी उसकी माँ ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं नहीं बेटा, तुम वहाँ मत जाओ। जैसे ही विक्रांत रंधावा ने अपनी माँ की घबराई हुई आवाज सुनी और ये सुना कि उसकी माँ वहाँ जाने से उसे मना कर रही है, तो वो हैरान हो गया और बोला, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैं वहाँ क्यों नहीं जा सकता?
तब विक्रांत रंधावा की माँ ने उसे कहा, बेटा वो शिव मंदिर सालों पहले ध्वस्त हो चुका था और अब तारा परी वहाँ जा रही है। तारा परी के पेट में जिन्नतों का वंशज है। अगर तारा परी ने वहाँ जाकर उस शिव मंदिर को वापस से स्थापित कर दिया तो वो पूरी जगह इतनी शक्तिशाली हो जाएगी कि कोई भी काली शक्ति वहाँ टिक नहीं पाएगी, और साथ ही तारा परी और जिन्नतों की महारानी करिश्मा की शक्तियाँ भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। अगर तुम वहाँ गए तो तुम्हारी जान को वहाँ खतरा हो सकता है, तो भलाई इसी में है कि तुम्हें तारा के वहाँ से आने का इंतजार करना चाहिए। लेकिन विक्रांत रंधावा कहाँ अपनी माँ की बात सुनने वाला था, उसे तो सिर्फ तारा को देखने का भूत सवार था। इसीलिए वो अपनी माँ की एक भी बात सुने बिना शिव मंदिर की ओर रवाना हो चुका था, क्योंकि वो बस जल्द से जल्द अपनी आँखों की प्यास बुझाना चाहता था तारा परी को देखकर, क्योंकि उसने 2 दिनों से तारा को नहीं देखा था, केवल उसके अनुष्ठान के वक्त ही देखा था, और तब से अब तक 48 घंटे हो चुके थे। उसे तारा परी की याद आ रही थी, इसीलिए वो इस बात की परवाह किए बिना कि वहां उसकी जान को खतरा हो सकता है, वो शिव मंदिर की ओर रवाना हो चुका था।